ஓம் சாந்தி. प्यारे बाबा ने प्रथम लेसन से ही खुद का ज्ञान दिया. हम है क्या, अपने आप को क्या समझना है, कहीं जो है उससे अपने आप को ज्यादा समझ लेते, उसको कहते हैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेना. जो है उससे ज्यादा अपने को मान लेना. तो जब हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं तो अभिमान आ जाता है, और कोई अपने आप को जो है उससे भी ज्यादा कम मान लेते, इसको अंडर एस्टिमेट करना कहते, तो निराशा आ जाती. पर बाबा ने हमें हम जो हैं, जैसे हैं, जिसके हैं, वो राइट ज्ञान दिया. इसलिए हमारे अंदर न अभिमान आ सकता है न निराशा आ सकती. दुनिया में जो रहते हैं उनको ज्ञान नहीं है बाबा का, वो आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं, अपने आप को भी नहीं जानते हैं, बाबा को भी नहीं जानते हैं. भल जीते हैं भगवान के भरोसे ही, पर यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं. तो दुनिया की परिस्थितियां, बातों को देखकर दुखी हो जाते हैं, भाई चिंता में आ जाते हैं. बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो निराश हो जाते. पर जब से बाबा के बने हैं, हमें बाबा ने संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया. यही बाबा की सबसे बड़ी कृपा है कि संपूर्ण सत्य ज्ञान बाबा ने हमें. अपने आप को भी हम यथार्थ समझते हैं, हमारी ओरिजिनलिटी क्या है, हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, हमारा भविष्य क्या है, सब हम जानते हैं. हमारी ओरिजिनलिटी क्या है, अपने असली स्वरूप में हम आत्मा कैसी हैं, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये हमारी ओरिजिनलिटी है, रियलिटी है. भल चक्र में आते आते अभी कलयुग अंत में पतित बन गए, पर फिर बाबा ने अपना बना लिया, तो हमारा वर्तमान तो फिर श्रेष्ठ बन गए, पवित्र ब्राह्मण आत्माएं हैं, ज्ञानी आत्माएं हैं, योगी आत्माएं हैं। हमारा अब वर्तमान तो यही है ना। अगर यही बातें हम चिंतन में रखते हैं तो हमें हमेशा अपनी श्रेष्ठता अनुभव होती है। कहते हैं ना कि भाई लाइट साइड को देखो, डार्क साइड को नहीं। ब्राह्मण बन गए तो वो सारा तो फुल स्टॉप हो गया। कहीं यही सोच सोच के दुखी होते रहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मुझे ऐसे लोग मिले, कैसे कैसे मिले, वही सोचते रहते हैं ना। बॉडी कॉन्शियस थे तो बहिर्मुखी दृष्टि थी, दूसरों से कंपेयर करते रहते थे, इनके बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरे ठीक नहीं है, मेरा पति ऐसा है, इनका बहुत अच्छा है, मेरी बीवी ऐसी है, क्योंकि बुद्धि बाहर थी ना, बहिर्मुखी थे, तो दूसरों से कंपेयर करते रहते थे। पर बाबा ने बताया कि कौन मिले, कैसे मिले, ऐसे मिले, वैसे मिले, नहीं, अब कौन मिला है, अब ये सोचो, अब कौन मिला है, कौन मिला है, भगवान मिला है, भगवान हमारा साथी बना है, भगवान हमें रोज गाइडेंस देते है ना। रोज मुरली में कितना हर बात बाबा समझाते हैं, तो वो बातें नहीं सोचो, ऐसे मिले कैसे मिले ये नहीं सोचते रहो, तो अपने आप में निराश होते रहते, मेरा भाग्य ठीक नहीं है, तभी मुझे ऐसे मिले हैं, नहीं, जो भी मिले हैं, जैसे भी मिले हैं, एक्यूरेट मिले, एक्यूरेट मिले हैं, हमारे अपने कर्मिक अकाउंट अनुसार सब एक्यूरेट मिले। भगवान किसी को अन्याय नहीं करता है, ड्रामा में कोई पक्षपात नहीं है, जो मिले हैं बाबा कहते हैं उनको स्वीकार करो, एक्सेप्ट, स्वीकार करो। हम स्वीकार नहीं करते हैं इसलिए डिस्टर्ब होते रहते हैं और फिर नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मुझे ही ऐसे क्यों मिले। पर आप खुद ज्ञान स्वरूप बनकर सोचो कि मुझे ही क्यों मिले हैं, मेरा हिसाब किताब से मिले हैं, परंतु माइनस प्लस होकर के आखिर हमारे ड्रामा का एंड कितना अच्छा है, हमें भगवान मिले हैं, सुखदाता बाबा मिला है, सदा का साथी बाबा का मिला है। क्यों हम ऐसा सोचते रहते थे, अब तो नहीं सोचते हैं ना, अब तो हमें बाबा मिले हैं, भगवान मिला है, भगवान का सत्य ज्ञान मिला है, इतना ऊंचा संग मिला है, तो अब तो अपने आप से खुश है ना, देखो बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, हमें इन बातों से बाहर आना है ना, ऊपर उठना है। रोज बाबा कितना नशा चढ़ाता है, कितना समझाता है। तो हमें बाबा कहते हैं ना, जो हो चुका वो तो हो चुका ना, वो तो पास्ट इज पास्ट है ना, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। पर एक बात कि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं कि भई ऐसे मिले कैसे मिले, उस समय हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम भी कैसे हैं। अपने आप को उस समय हम भूल जाते हैं कि हम भी कैसे हैं, हमारे में भी कोई कमी पेशी है कि नहीं है। अगर भाई जी गुस्सा करते हैं तो हम रुसते रहते हैं, रुठते रहते, ये भी तो कमी है ना, हमारे में भी तो कैसे कैसे संस्कार है, हम भी तो कोई संपन्न और परफेक्ट तो नहीं है ना, हमें भी तो कोई एडजस्ट कर रहा है ना, हमें भी कोई सहन कर रहा है। तो दूसरों के लिए हम कैसे ऐसा सोच सकते हैं? ये समय ही अंत का है। अभी बाबा हमें मिले हैं तो हम पुरुषार्थी हैं, उसमें भी हम नंबर वार पुरुषार्थी हैं, है ना? तो खुद को भूल जाते हैं, दृष्टि दूसरों के तरफ होती है। बाबा ने प्रथम लेसन से ही हमें क्या सिखाया, हर बात में पहले खुद को देखो, स्वदर्शन करो। ज्ञान नहीं था तो स्वदर्शन का अभ्यास ही नहीं। देखो, ज्ञान से पहले दूसरों के बारे में ही सोचते रहते थे, इनके घर में ऐसा है, इनकी बहू ऐसी है, इनका बेटा ऐसा है, इनका धंधा ऐसा है, यही सोचते रहते थे ना। खुद की सोचने की तो अकल ही नहीं थी, क्योंकि खुद का ज्ञान ही नहीं था। बाबा ने हमें खुद का परिचय दिया और खुद में स्थित किया, स्व में स्थित होना। तो हम खुद को समझने लगे। तो जब ये सारी समझ आती है तो कोई नाराजगी नहीं रहती है, कोई निराशा भी नहीं रहती। देखो, ज्ञान नहीं था, भगवान से भी नाराज रहते थे, काहे को दुनिया बनाई, गाते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, काहे को दुनिया बनाई। भगवान को भी कहते हैं, पर बाबा ने आके हमें बताया कि भाई मैंने नहीं ऐसी दुनिया बनाई, मैंने तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी, सतयुगी दुनिया बनाई थी, तुमको देवता बनाया था, मैंने तो वो दुनिया बनाई थी, तुमने ही जन्म बाय जन्म उतरते उतरते तुमने खुद ही ऐसी बना डाली। तो ज्ञान से पहले क्यों दुखी थे, क्यों नाराज थे, मेन बात यही थी कि दूसरों को ही देखते रहना। देखो, कोई भी मुसीबत विघ्न समस्या कष्ट आता है तो यही समझते थे, एक दो को दोषित करते थे, इसके कारण प्रॉब्लम हुआ है, यही मुसीबत है मेरे लिए, यही विघ्न डालती है, दूसरों को ही दोष देते थे ना। पर बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उसका कारण हम खुद ही होते हैं। कई सोचते हैं ना कि बस बाकी सबका कहा हुआ मानते हैं, मेरा ही नहीं मानते, बाकी को तो दौड़ दौड़ के मदद करने जाते हैं और मैं कहती हूं तो कुछ करते ही नहीं। पर अगर वो बुरे होते तो सबके साथ ऐसा करते ना, पर दूसरों के साथ अच्छे हैं और मेरे साथ अच्छे नहीं हैं तो इसका कारण क्या हुआ, हिसाब किताब है। तो हमें एक दो को दोषित नहीं करना है, बल्कि हमें और अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि वो हिसाब अगर वो बुरा करे, आप बुरा करे, वो बुरा करे, आप बुरा करे, वो रिएक्ट करे, आप रिएक्ट करे, तो ये तो चक्र चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत ही नहीं आएगा। तो ये लक्ष्य रखना है कि कोई कैसा भी व्यवहार करे, मुझे अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि मैं अच्छी हूं। आप अच्छे हैं कि नहीं है? हाँ है ना, अच्छे ना? मैं अच्छी हूं ना, मुझे अच्छा व्यवहार करना। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, मैं योगी आत्मा हूं। रोज भगवान से हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हाँ, तो हमें अच्छा करना है, अपने आप धीरे धीरे हिसाब चुक्त हो जाएगा और वो आत्मा परिवर्तन करेगी अपना। हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरा उनके पास कोई जमा नहीं है। हाँ, खाता ही खाली है तो वो अच्छा रेस्पॉन्ड कैसे करे, मुझे अच्छा करना। बाबा ने कभी कहा क्या हमें, हम कितने पतित हैं, अवगुण वाले हैं, विकार वाले हैं? हाँ, बाबा ने कभी हमारी घृणा नफरत की कि भाई जाओ तुम नहीं बन सकते देवता, कभी ऐसे कहा? हाँ नहीं, बाबा सदा प्यार करते, एक भी दैवी गुण नहीं रहा, सब भी बाबा कहते तुम ही देवता थे, तुमको ही बनना है। सारे सद्गुण चले गए, कितने अवगुण भर गए, कितने पति तमो प्रधान बन गए, पर बाबा सदा हमें ऊंची नजर से देखता है। तो हमें भी क्या करना है, जो बाबा करते हैं वो हमें करना है ना, फॉलो करना है ना। जैसे बाबा ने सबको चलाया है, हमें भी सबको चलाना है, सबके साथ चलना है। तो आपके अंदर जरा भी कोई डिस्टरबेंस नहीं। बाबा ने पहला काम ही हमारे स्वमान को जगाया, और भक्ति में क्या किया गया, हमारे स्वमान को तोड़ दिया गया। क्योंकि जो भी ब्राह्मण पंडित पुजारी जो भी थे, डोमिनेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, सब गृहस्थियों के स्वमान को तोड़ दिया। तुम गृहस्थी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हम तुमको पार करेंगे। हाँ, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। और विशेषकर अपने हिंदू धर्म में ये हुआ कि जो धर्म का साहित्य है वो सारा संस्कृत में है, आम जनता समझ नहीं सकती। बाकी देखो बौद्धियों जैन सबका साहित्य लोकल भाषा में, हर कोई पढ़कर समझ सकता है, पर हमारा साहित्य संस्कृत में है, हम समझ नहीं पाते। तो विद्वानों पंडितों ने कहा कि हम तुमको सुनाएंगे, हम तुमको समझाएंगे, तुम तो हमारे चरण में आओ और शरण में आओ। तो पूरा स्वमान ही खत्म कर दिया। इसमें भी बॉडी कॉन्शियस बनकर स्त्री और पुरुष देहभान में आकर स्त्री पुरुष के भेदभाव कर दिए। बाबा ने अपना बनाकर हमारे स्वमान को जगा दिया कि स्त्री और पुरुष की बात ही नहीं, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, तुम तो आत्मा हो, हर एक आत्मा है, आत्मा शक्ति है, तुम आत्माएं परमात्मा के बच्चे हो। तो हमारा सबसे बड़ा स्वमान कौन सा है? हम भगवान के बच्चे हैं, हम ईश्वरीय संतान है। तो अपने आप में कितना उमंग, उत्साह, ऊर्जा आ गई ना कि हम साधारण नहीं हैं। हम नागरिक शास्त्र पढ़ते थे तो उसमें एक कहानी आती थी कि राजा का बेटा था, घर से भटक गया, भेड़ों के बीच में पहुंच गया, उनकी तरह ही रहने लगा, सिर झुका के चलने लगा। बहुत खोज करने पर पता चला कि अरे राजकुमार तो भेड़ों के बीच पहुंच गया, भेड़ की तरह चल रहा है। फिर उनको राजमहल में लाकर शिक्षा दी कि भाई तुम राजकुमार हो, वैसे अच्छे कपड़े पहनाए, रोज उनको शिक्षाएं दी, तो उसमें जागृति आ गई। तो ये कहानी किसकी है? हम सबकी है ना। हम तो भगवान के बच्चे, सतयुग के देवता, कितने महान और ऊंचे थे, पर हमने क्या समझने लगे कि मैं तो गृहस्थी हूँ, संसारी हूँ, हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, लोग क्या कहेंगे। स्वमान टूट गया तो कितने दब गए, देखो गलत बातों में फंस गए। बाबा ने आकर हमारा स्वमान जगाया। क्यों रोज बाबा पक्का कराते हैं, तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, तुम बच्चे ही वर्षे के अधिकारी। रोज कितना बाबा हमारे में शक्ति भरता है, उमंग जगाता है। हमारे निराश होने की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं जो था वो सब तो तुमने गंवा दिया, ताज था, तिलक था, तख्त था, सब गंवा दिया। बाबा कहते ना तुम उतर गए देवाला मार्ग। अब बाबा फिर से प्राप्ति करा रहा है, कोई बात नहीं, ड्रामा, ओम शांति। अब मैं जो कहता हूं वो तुम करो, और हम कर रहे हैं। तो देखो कितना हमारे जीवन में खुशी है, नशा है, शक्ति है। आपको कई लोग मिलते होंगे और कहते होंगे कि भाई आप कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। कहते हैं कि नहीं कहते? उन्होंने ताकत ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकते। कितनी ऊंची धारणाएं हमारे जीवन की हो गई। पवित्रता कोई सोच सकता है दुनिया में? ब्रह्मचर्य का पालन, हम बाबा के बच्चे करते हैं। सच्चे बच्चे, पवित्र योगी बच्चे, वो तो इतने विषय भोग में फंसे हुए हैं, पवित्रता की बात तो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उल्टा ज्ञान दे दिया ना कि गृहस्थी का ये धर्म है। खुद साधु सन्यासी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करते, पर गृहस्थियों को दबाने के लिए बोला ये तुम्हारा ग्रस्त धर्म, विकारों में डुबके खाते रहे ताकि आप भी उनकी तरह उठे नहीं ना, इसलिए दबा के रखा। और बाबा ने आते ही कहा सबको संपूर्ण बनने का अधिकार, ये कितनी बड़ी बात बाबा ने कही, हर आत्मा को संपूर्ण बनने का अधिकार है। संपूर्ण बनना माना देवता बनना। देवता की महिमा क्या गाते हो? सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार। संपूर्ण बनने का अधिकार, देवता बनने का। भक्ति में तो क्या कह दिया, ये शास्त्र तुम नहीं पढ़ सकते, इस मंदिर में महिलाएं नहीं जा सकती, इस मंदिर में फलानी जाति वाले नहीं जा, कितना भेदभाव कर, घर घर में भेदभाव, ये बेटा है ये बेटी है, बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, ये काले गोरे, कितना आज पूरा संसार आप देख, कई लोग ये बात के कारण कितने डिप्रेस रहते, कितना अन्याय लगता है कि हमारे साथ घर में क्यों ऐसा बेटा बहू फलाना, कितना भेदभाव रखते, ये सारा देह अभिमान के। धर्म में भी जाति ज्ञाति, स्त्री नहीं कर सकती पुरुष कर सकते। बाबा ने आते ही कहा कि बाबा हर आत्मा को वर्षा देते, यहां बच्चे बच्ची का भेद नहीं है, हर आत्मा को अधिकार है। तो देखो कितना हम सब आगे बढ़ गए ना, हमारे जीवन कितने ऊंचे बन गए। पवित्रता हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, जब तक पवित्र नहीं हम ब्राह्मण नहीं, सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं। वही हम आत्मा आत्मा भाई भाई है, देह मैं नहीं हूं, जब खुद के शरीर को ही भूलना है तो दूसरे के शरीर में बुद्धि लगाने की बात ही नहीं है, देह को भोगने की बात ही नहीं है। तो कितनी ऊंची पवित्रता की धारणा हमारे जीवन में आ गई। हमने जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि की धारणा की, वो तो भाई सोमवार उपवास है या गुरुवार उपवास है या एकादशी का व्रत कर लिया, पूर्णिमा का व्रत कर लिया, पर बाबा ने तो धारणा कौन सी करवाई, शुद्ध अन्न। ये हमारे जीवन भर की धारणा, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन बाबा की याद में बनाना और बाबा की याद में खाना। हमें कोई आकर्षण नहीं होता है, शादी में जाओ, बाजार में जाओ, होटलों में, हमें कोई आकर्षण नहीं होता। भगवान ने कहा और हमने माना ना, ये शक्ति क्यों आई? क्योंकि हम देवता थे, हमें ही फिर बनना है। सीढ़ी के चित्र में क्या ज्ञान मिलता है? यही मिलता है। और हमें वो स्वीकार हुआ, बाबा ने कहा पर हमें स्वीकार हुआ, महसूस हुआ कि बात सही है। हम रोज अमृत वेले उठते, कितनी ऊंची धारणा है। जानते हैं ना, भगवान से मिलन मनाने का हम बच्चों के लिए टाइम कौन सा है? अमृत वेला, 3 से 5 के बीच में बाबा बच्चों से स्पेशल मिलते हैं। वो समय है भगवान से जो प्राप्ति करना चाहे वो हम कर सकते। बाबा कहते 5 बजे से तो भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है, फिर बच्चों का नंबर नहीं लगता है। इसलिए भले कितना भी मुश्किल लगे पर मेहनत करके भी हमें अमृत वेले उठ करने की जो धारणा है वो पक्की कर। हम रोज सुबह मुरली क्लास करते, यहां देखो बाबा के घर में 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 भी आए हैं, पर सभी एक साथ तैयार होकर मुरली क्लास। सुबह उठकर नहा धो के तैयार हो जाते, रोज ज्ञान योग करना ही है, करते ही है। जिस रास्ते से आप रोज सेंटर जाते हैं वो रास्ते वाले आपको देखते हैं कि ये माता जी रोज डायरी लेके जाती है, वो सोचते हैं पता नहीं कब तक इनको जाना होगा। हम क्या जवाब देते हैं? कब तक जाना है? जब तक जीना है, ज्ञानामृत पीना है। कोई सोचता है कब तक खाना है? हाँ, रोज सब खाने के लिए बैठ जाते हैं ना, तो फिर ज्ञान योग कब तक करना है? सारा जीवन ही करना है, वो हमारी खुराक है, मन बुद्धि की खुराक है। तो देखो आत्मा में उमंग उत्साह है, कोई भी धारणा करना मुश्किल नहीं। उमंग उत्साह चाहिए, अब क्यों निराशा रहे? खुद भगवान देवता बना रहा, रोज ज्ञान दे रहा है, अपने आप को ऊंचा उठाना है ना, साधारण थोड़ी बने रहना है। भाई भक्ति में कहते हैं कि हम तो यथाशक्ति यथा भावना धर्म का काम करते, ऐसे बोलते हैं ना, वो भक्ति है क्योंकि उसमें श्रद्धा है पर शक्ति नहीं है ना, ज्ञान नहीं। हमारे पास तो अब सत्य ज्ञान है, हमारा डायरेक्ट भगवान से योग है, कितनी शक्ति है। हम क्यों यथा शक्ति यथा भावना पुरुषार्थ करें? हमें पूरे निश्चय से, पूरी शक्ति से पुरुषार्थ करना। पसंद है तो हाथ ऊपर करो। हाँ, बाबा को ऐसा नहीं कहना है कि बाबा जितना हो सकता है करते हैं, मीन्स ज्ञान बरोबर समझाई दे। देखो, भक्ति में आत्मा को इच्छा थी, विकारों से मुक्त हो जाएं, पावन बन जाएं, हमारे पाप नाश हो जाएं, इसके लिए भक्ति में कितनी मेहनत करते, कितने तीर्थों पर जाते, कितने व्रत उपवास करते, कितने मंदिरों में जाते, कथाओं में जाते, कितनी मेहनत करते हैं, पर सही ज्ञान नहीं था, कोई सच्चा गुरु नहीं था। मनुष्य गुरु थे, सत गुरु तो कोई नहीं था। बाबा कहते ना, गुरु अनेक है, सत गुरु एक ही है, वो परमात्मा है। वहां इच्छा थी, पुरुषार्थ मेहनत करते थे, पर ज्ञान सत्य नहीं था, गुरु सही नहीं था। और बाबा कहते हैं, द्वापर कलयुग का समय ही उतरती कला का था। अब क्या है? अब सत्य ज्ञान है। देखो, जितना अच्छी तरह आप मुरलियों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान की किताबों का अध्ययन करते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं हमारे ज्ञान के, जितना ज्ञान गहरा, हमें बात आई नहीं और बुद्धि में जवाब आ जाता है। परिस्थिति आई नहीं और ज्ञान जवाब देता है, क्या करना? अच्छी तरह ज्ञान योग स्टडी करेंगे, अपने 60% प्रॉब्लम तो ज्ञान से ही खत्म हो जाते, क्योंकि आधी समस्याएं सही ज्ञान ना होने के कारण। ज्ञान में आते ही देखो हमारे जीवन के दुख दर्द कितने कम हो गए। क्योंकि सत्य ज्ञान ही एक शक्ति है, सत्य ज्ञान से ही आत्मा में जागृति आती है। ये समय चढ़ती कला का है। स्वयं भगवान रोज हमें गाइड करते हैं। ये मुरली किसकी है? बाबा के महावाक्य। आदि पिता ब्रह्मा बाबा का चिंतन है। तो ज्ञान आत्मा को जगा देता है, मीन्स सारी कमजोरी निराशा खत्म, उमंग उत्साह और ऊर्जा आ जाती। सब खुशी से ज्ञान में चलते हैं ना? हम अपनी खुशी से चल रहे हैं, किसी के कहने से थोड़ी चल रहे। कहीं आते हैं ना, बहन जी आप इसको बोलो शादी करो, मैंने कहा मेरे कहने से भी वो नहीं करेगा, क्योंकि भगवान के कहने पर ये चल रहा। लोग समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां उनको मना कर दे, हमारे मना करने से थोड़ी होता है। ये तो बाबा ने हर आत्मा को जगाई है, हमने पहचान लिया है ना ये समय कौन सा है। बताओ क्या पहचाना? ये समय कौन सा है? हाँ, हम तो संगम युग में है ना, ये चढ़ती कला का समय। माना स्व उन्नति का ये समय, भगवान आए हैं। ये समय कौन सा है? जब भगवान आते हैं। ये बातें नहीं है, सत्य है। हमने ज्ञान नेत्र से पहचाना है कि ये महावाक्य, ये सद्ज्ञान और कोई दे नहीं सकता, ये परमात्मा ही दे सकता। ये कौन सा समय है? कौन आया है? कौन आया है? भगवान आया है। हाँ, पावर से बोलो, नहीं तो लोग समझेंगे कोई भगवान भाई आया होगा। हाँ, खुशी और नशे से बोलो, भगवान आया है। और वो हमें क्या कह रहा है? वो कहे वो हम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तो हम बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हम बच्चे आपस में ऐसा पूछते थे कि भगवान तुमको कहे कि इतनी मिर्ची खा जाओ तो तुम खा जाएगी? तो हम कहते हाँ, भगवान कहेंगे तो हम खा जाएंगे। फिर पूछते थे भगवान कहे कि इतना मटका पानी पी जाओ तो पी जाएगी? तो हम कहते थे हाँ। बाघ आवे तो भी नहीं डरेगी? नहीं, ऐसे कहते। फिर हम ताली बजाते, उसके आंख ऐसे हो जाते, बोलो डर गई ना। तो ऐसा खेल करते थे। उस समय तो अकल भी नहीं थी कि कौन भगवान है, कब आता है, कब कहता है, पर ये तो जीवन का सत्य बन गया ना, कि अब हमें सच में भगवान मिला। वो क्या कह रहा है? वो हम करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। हिम्मत रखो, शक्ति रखो। बुराइयों का त्याग तो करना होगा ना, गंदगी भी रहे और सुगंध भी हो, ये हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता है। तो जो छोड़ना है वो हमें छोड़ना है। बाबा कहते तुम एक कदम उठाओ, मैं हजार कदम आपके साथ। कितनी मदद मिलती। आज हम सभी ने अपना जीवन पवित्र योगी बनाया, कितनी ऊंची नजर से लोग देखते। जानते हैं ना ब्रह्मा कुमार कुमारियों के नियम क्या है? थोड़ा भी घर में आप गुस्सा करेंगे, बच्चे कहेंगे मैं दीदी को बता दूंगा, बाबा को बता दूंगा, आप गुस्सा करते देखो। पता है हमारे नीति नियम कितने ऊंचे? खुशी, नशा, पर रियलाइज करो कौन मिला है, कौन सा समय है, हम कौन सी आत्माएं हैं, हमें क्यों इतना महान बनना है। और तो कोई महान बनाने की बात ही नहीं करता था, ज्ञान नहीं था तो कौन सी बातें करते थे? वही संसारी बातें, नौकरी धंधे की, समाज की, इसकी उसकी। कभी इतनी ऊंची बातें हमने सोची थी? तो खुद साइलेंस में बैठो, भट्ठी में आए हो ना, और अपने आप से बात करो, कौन मिला है, कौन सा ज्ञान हमें मिला है, कितना ऊंचा बाबा, कितनी ऊंची संस्था, कितना ऊंचा यज्ञ हमारा है, कितना ऊंचा ज्ञान। तो हम भी कैसे होने चाहिए? हम भी कैसे होने चाहिए? ऊंचे, महान। हम क्यों साधारण रहे? जब ये बुद्धि में स्वमान नहीं, नशा नहीं, तो साधारण बातें निकलती है मुख से। हल्के विचार आते हैं क्योंकि स्वमान नहीं है ना, रियलाइजेशन नहीं। कितने ऊंचे टाइटल बाबा ने हमें दिए हैं, वो कोई ऐसे ही फूल चढ़ाने के लिए थोड़ी बोलते हैं बाबा। ये सत्य है। इसलिए रोज खुद को याद कराओ हम कौन है, रोज किसके सामने बैठे हैं, कौन सी पढ़ाई हम पढ़ रहे। एक कहानी में बताते हैं ना कि एक शूज कंपनी थी और उनके दो सेल्समैन थे। एक को ईस्ट अफ्रीका में भेजा, एक को वेस्ट अफ्रीका में भेजा कि जाओ वहां देखो हमारे लिए कितना मार्केट है। वहां शूज बनाती थी वो कंपनी। तो एक ने आके कहा कि जो वेस्ट में गया था उसने कहा कि नो मार्केट, हमारे लिए वहां कोई मार्केट नहीं। कहते क्यों? क्योंकि वहां कोई शूज पहनता ही नहीं, इसलिए हमारे लिए कोई मार्केट नहीं। दूसरा जो ईस्ट में गया था उसने कहा हमारे लिए फुल मार्केट है। कहते क्यों? क्योंकि वहां कोई शूज पहनता ही नहीं है, इसलिए हम अपनी प्रोडक्ट वहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देख फर्क क्या है, सोच, दृष्टिकोण, स्टेज। हमारे विचार, दृष्टिकोण भी हमारी अवस्था पर आधारित रखते हैं। बाबा कहते मैं इतना नशा चढ़ाता हूं, इतनी ऊंची नजर से देखता हूं, इतने टाइटल देता हूं, उसकी असर नहीं होती है। और कोई आपस में कह दे कि बुद्धू हो, गधे जैसे हो, तो तुरंत फील हो जाता है कि मेरे को गधा कहा, बुद्धू कहा, मनुष्य का कहा हुआ असर हो जाता है और भगवान का कहा हुआ असर नहीं कर रहा है। तो भाई अपने आप को जगाओ, ऊंचा चढ़ाओ, खुद को समझाओ। समय तो संपूर्ण बनने का आ गया है, तो हम साधारण कब तक रहे? हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना ही है। लक्ष्य पक्का कर लो, स्वमान रहे, झूठा अभिमान नहीं। अभिमान करने की तो कोई बात ही नहीं। ज्ञान किसका है? बाबा का ज्ञान है। कोई हमारा ज्ञान है क्या जो हम अभिमान कर? बुद्धि किसने दी? बाबा ने दी। बाबा कहते हैं ना, रियलाइज करो, पहले बुद्धू थे, बाबा ने बुद्धि दी है। बहुत बुद्धि थी तो बाबा कहते उतरती कला क्यों हुई, तुम्हारा ताज तख्त सब क्यों चला गया? बाबा कहते ना, बुद्धि तो देवाला मारा था, माया के वश हो गए थे। बाबा ने दिव्य बुद्धि दी, सत्य बुद्धि, तब तो अब हम निर्णय कर पाते, कंफ्यूज नहीं होते। क्योंकि रोज मुरली से बाबा हमें क्या देता है? बुद्धि ही तो देता है। भक्ति में कहते हैं ना, भगवान जब अकल बांटने आए तो क्या कर रहे थे, वो तो सो रहे थे, पर हम तो जाग गए ना। रोज मुरली में बुद्धि ही तो बाबा देता है, सद्बुद्धि ही तो बाबा देता है। ये सेंटर किसके हैं? बाबा के हैं। हम सब तो निमित्त है सेवा करने वाले, मेरा सेंटर तो नहीं है, प्रैक्टिकली भी तो बाबा का ही है ना। सेवा किसकी है? बाबा की है। और बच्चे हम किसके हैं? बाबा के। हम निमित्त बनते हैं किसी न किसी को ज्ञान में लाने के लिए, पर मेरा तो नहीं है ना, तो अभिमान किस बात का? बाबा कहते हैं अपने आप को निमित्त समझो। भाई सेंटर बनाया, भाग्य बनाया, हमने अपना तन मन धन सफल किया, इससे वो मेरा तो नहीं हो गया ना। पर सूक्ष्म में अभिमान आता है तो हम कहते रहेंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया। यज्ञ में देने के बाद भी मेरापन नहीं जाता है, पकड़ के रखते हैं। एक माता ने टेबल लाके दिया था, कुछ दिनों के बाद वो टेबल दिखाई नहीं दिया सेंटर में, तो माता जी सोचने लगी कि मैंने जो टेबल दिया था पता नहीं कहाँ चला गया, लगता है दीदी ने बेच दिया है, किसी को दे दिया है। अब देखो देने के बाद भी ये सोचना मीन्स आपने दिया ही नहीं, अभी भी आप अधिकार से सोच रहे, तो जमा कैसे होगा? आपने दिया, आपका 100% जमा हो गया, आपने तो बाबा को दिया, यज्ञ को दिया। अब बेंजी ने बेच दिया कि कहीं भेज दिया, वो बेंजी जाने और बाबा जाने, हम उसमें क्यों जाएं? तो बहुत छोटी छोटी बात में मैंपन रहता है। हम यज्ञ में देते हैं, सेवा करते हैं, किसके लिए? अपने लिए करते ना। हमारा समय, शक्ति, धन, तन भगवान के काम में लगे। ज्ञान नहीं था, विकारों के वश थे, एक एक कर्मेंद्रिय से पाप करते रहते थे। अब हमारा लक्ष्य है हर कर्मेंद्रिय से मुझे पुण्य करना है। संडे की मुरली सुनी ना, पुण्यात्मा बनना है। हमारा किया हमारे साथ ही रहता है, निश्चिंत निर्माण हो करके हमें सेवा करनी, तो न सेवा का अभिमान न सहयोग देने का अभिमान, न ज्ञान का अभिमान, न पुरुषार्थ का अभिमान, ये भी नहीं। हमारे बाबा मम्मा कितने महान है, बाबा की तुलना में हमारी सेवा क्या है बताइए? ये तो निश्चय और साक्षात्कार मात्र से समर्पित हो गए। कितनी बड़ी बात है। बाबा तो कलकत्ता जा रहा था, पता है ना, हैदराबाद से कलकत्ता जा रहे थे, क्योंकि कलकत्ते में भी बाबा की ज्वेलरी की शॉप थी। बीच में बनारस में अपने मित्र के पास गए, वहां बाबा को साक्षात्कार, और बाबा ने निर्णय कर लिया कि अब मुझे बिजनेस नहीं करना है, बस मुझे इसी इशारे पर काम करना है। चलो, आप सभी को बाबा ने तो गर्भग्रस्त में रहते हुए कमल फूल बनना है, ट्रस्टी बनकर रहना है, यही कहा है ना? भल हम यज्ञ में रहते हैं, हम भी तो निमित्त हैं, और निमित्त समझने में ही फायदा है और कल्याण है। मेरा समझा तब तो टेंशन हो गया, जीवन भारी बन गया। इसलिए कभी भी हिम्मत भी नहीं हारनी है, सदा भगवान हमारे साथ है, हमारे सत्कर्म हमारे साथ है, बाबा का ज्ञान हमारे साथ है। और ना अभिमान करना है, पसंद है बाबा की बात, हाँ पसंद है ना? बहुत अच्छा। ओम शांति।
उन प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सर जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक।